सुमन बहन जी का जो परिचय है शॉर्ट में है, सीनियर मेडिटेशन टीचर एंड मैनेजमेंट ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी, नेशनल कोऑर्डिनेटर एजुकेशन विंग्स, कॉन्फ्रेंस स्पीकर लिटरेचर इंस्पायर्ड माउंट आबू। आपने 5 साल की उम्र से अपने माता पिता के साथ ब्रह्मा कुमारी में संपर्क में आए हैं, तो माना बचपन से उनको ज्ञान पसंद है, उनका आध्यात्मिक प्रति गहरा प्यार है और समाज की भलाई करने का उनका पहले से ही इच्छा थी कि मैं कुछ भलाई करूं समाज की। अपने स्कूलों के दिनों में अपने एक प्रतिभाशाली छात्रा और खिलाड़ी रहे हैं। आपने 1992 से यहाँ माउंट आबू में समर्पित हुए हैं। बैंगलोर विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक संचार इंजीनियरिंग से स्नातक से डिग्री BA प्राप्त की है। तुरंत अपना जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया है। तब से वो मुख्य माउंट आबू में रहे हुए हैं। स्व प्रबंधक नेतृत्व तनाव प्रबंधन संचार प्रदेश का किया गया है। कौशल्य जीवन मूल्य आदि सीनियर सिस्टर है और सब संगठनों में पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। भारत और विदेशियों में संस्थाओं में उद्योग में उन्हें टेलीविजन में भी पाए जाते हैं, माने टेलीविजन में भी उन्होंने काम किया हुआ है और विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विषयों पर भी उन्होंने लेक्चर दिया है। तो माउंट आबू से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होते हैं तो वह एक राज्यों के ध्यान से अनुभवी शिक्षक है, मार्गदर्शिका दिखाते हैं। डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम वैल्यू जो एजुकेशन वो बैंगलोर से किया हुआ है। तो भारतीय और विदेशी के लिए ज्ञान सरोवर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में समन्वय साल भर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका भी रूपरेखा देते हैं। आपने अपने आध्यात्मिक अनुभव से सजा करके कई लोगों को प्रेरित भी करते हुए भारत और विदेशों में बड़े पैमाने पर यात्रा की है। हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ धारा प्रवाहित मना बोल सकते हैं और उनकी एक विशेष व्यापार है। तो हम अभी आगे उनका लेक्चर सुनेंगे। VK सुमन बहन जी,
ओम शांति। अभी इस सेशन में कहानियां सुनेंगे, ठीक है? बहुत ज्ञान सुने, लेकिन इस सेशन में ब्रह्मा कुमारी जो अभी आप देख रहे हैं, इतने बड़े पैमाने में इंटरनेशनल संस्था ब्रह्मा कुमारी का जाना माना है अभी। तो अभी शुरू ये ब्रह्मा कुमारी हुआ कहां से, क्योंकि अभी वर्तमान समय देखा जाता है दिस इज द लार्जेस्ट वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। 130 कंट्रीज में यह संस्था फैली हुई है। करीब 8,500 मेडिटेशन सेंटर्स विश्व भर में है और 10 लाख से भी ऊपर भाई बहने इस संस्था के साथ जुड़ करके राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं। अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है उनको और ये पूरी तरह एक ग्लोबल फैमिली है। न कल्चर का बैरियर है, न भाषाओं का बैरियर है, न रिलीजन का बैरियर है। तो सभी मिलजुल करके जो परिवर्तन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं बहुत सुंदर रीति से। इसका एक ही लक्ष्य है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एकमात्र लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन लाना। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुआ अभी देखते हैं। सब जगह पर ये पिक्चर देखते हैं ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा के साथ का ये चित्र हर मेडिटेशन रूम में, हर हॉल में दिखाई देता है। इस संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को हम परमात्मा नहीं मानते हैं, भगवान नहीं मानते। भगवान परमात्मा का परिचय आपको आज सवेरे सबको प्राप्त हुआ। निराकार परमपिता परमात्मा वो भगवान है, और परमात्मा का अवतरण ब्रह्मा बाबा में होकर के फिर उनका ज्ञान संसार को देना शुरू किया, तो इससे ये संस्था शुरू हुई। वैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा जाता है, यथा यथाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम्। जब जब इस धरा पर धर्म की ग्लानी होती है तब मैं आता हूं। तो अभी कलयुग का अंतिम समय जब धर्म की अति ग्लानी हो चुका है, ऐसे समय पर परमात्मा का दिव्य अवतरण हो चुका है और उनका कार्य अभी चल रहा है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। लेकिन लौकिक दुनिया में 1930s में अगर देखा जाए, ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम दादा लेखराज था। सिंध हैदराबाद में रहा करते थे, जो अभी पाकिस्तान का एरिया है, और बहुत बड़े हीरे जवाहरातों का व्यापार किया करते थे। उनका जो बिजनेस है अलग अलग जगह पर, तीन जगह पर फैला हुआ था, एक है सिंध हैदराबाद और कराची, कलकत्ता और बॉम्बे, तीन जगह पर वो ट्रैवल करते थे और उनके बिजनेस फैला हुआ था। उस समय के नौकोटी नारायण कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अमीर थे। वैसे बचपन से तो अमीर नहीं थे, बचपन बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और धीरे धीरे वो ग्रोसरी के शॉप में काम करना शुरू किया, उनके चाचा का दुकान था। उनके ब्रह्मा बाबा के या दादा लेखराज, अगर कहे दादा लेखराज के, इतनी बुद्धि शक्ति और तीक्ष्ण बुद्धि के कारण से उन्होंने अपने बिजनेस बहुत ही जल्दी डेवलप किया और हीरे जवाहरातों के व्यापार में वो अपना बिजनेस शुरू किया, और धीरे धीरे अपने संपत्ति को इतना विस्तार रूप से, बिजनेस को इतना विस्तार रूप से उन्होंने फैलाया। फिर 1930s में जब उनके लगभग सात साल के उम्र था, उसके पहले कोई ऐसा वैराग्य की बात नहीं थी या भक्ति भाव ज्यादा नहीं था, लेकिन जसोदा उनकी धर्म पत्नी बहुत ही भक्ति भाव वाले थी, बहुत भक्ति करते थे, तो उन्होंने दादा लेखराज को प्रेरित किया भक्ति में इन्वॉल्व होने के लिए। उनका कहना यह था कि बहुत कमाया अभी, तो अभी थोड़ा बहुत अपना जीवन भगवान की याद में वो थोड़ा सा समय बिताएं। जैसे जैसे थोड़ा भक्ति के भाव में चलना शुरू किया, तो उनको अनेक प्रकार के अनुभव और साक्षात्कार होने लगे। उनके परिवार में, वो बहुत ही समृद्ध परिवार था उनका, दो बेटे और तीन बेटियां थी उनके। लेकिन धीरे धीरे उनको वैराग्य आने लगा, करीब उनके 60 साल के उम्र के समय, और उनको वो सागर के किनारे जाते थे कराची में या कलकत्ता में, और मेडिटेशन में बैठते थे, भगवान के याद में बैठते थे, पूरे विश्व के लिए वो शुभकामनाएं शुभ भावनाएं वो फैलाते थे, और अनेक प्रकार के उनको साक्षात्कार भी हुआ। लेकिन भक्ति जब भक्ति मार्ग में थे, वो बहुत दान पुण्य भी करते थे। रोज सवेरे उनके घर के सामने बहुत सारे लोग आते थे, दान पुण्य भी करते थे, पूजा पाठ करते, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते थे, और बिजनेस में अगर देखा जाए वो राजा महाराजाओं के साथ कनेक्शन में थे, रानियों को अपने जेवर बेचते थे, हीरे जवाहरात बेचते थे और उस जमाने में राजाएं ये कहते थे कि दादा लेखराज, भगवान ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे जगह पर आपको एक्चुअली राजा बनाना था लेकिन भगवान ने हमें राजा बना दिया, क्योंकि ये देखते थे बहुत रॉयल उनका व्यवहार होता था दादा लेखराज का। और जब भी वो महलों में जाते थे उनको कोई परमिशन लेना नहीं पड़ता था, रानियों के महलों में जाते थे तो उनको कोई परमिशन नहीं लेना होता था, क्योंकि इतने सात्विक और इतने पवित्र आत्मा थी, तो इसीलिए रानियां अपने पैलेस में, अपने महल में उनको अंदर आने देते थे। और जब भी जाते थे अपने बच्चियों को, किसी न किसी को अच्छी तरह सजा करके लेके जाते थे, और रानियां जब उनके बच्चियों को देखते थे बहुत सजे सजाए, तो वो रानियां कहती थी ऐसे हमको ऑर्नमेंट्स चाहिए, ऐसा नेकलेस चाहिए, ऐसा बक्कल चाहिए, ऐसा फिर कान का ये चाहिए। तो ना केवल वो इतने बच्चियों को सजाते थे लेकिन फिर घर वालों को भी बहुत ही रॉयल रीति से उन्होंने परवरिश दी थी। एक तरफ इतने बहुत ही अमीर घर के, लेकिन धीरे धीरे वैराग्य आते हुए उनको बहुत सारे बहुत प्रकार के साक्षात्कार हुए। बनारस में अपने दोस्त के पास गए थे तो वहां ऐसे मेडिटेशन में बैठे थे, भगवान को याद करते हुए बैठे थे, उनको इस सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। कैसे एक आग का गोला आकाश से उतर रहा है और सृष्टि को स्पर्श करते ही वो स्फोटित हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है और हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। ये साक्षात्कार करीब 1934 या 35 के स्टार्टिंग में हुआ था, जब बॉम्ब्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। पहला बॉम्ब आप सभी को याद होगा 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में प्रयोग किया गया था। 1930s में स्टार्टिंग 1930s में कोई बॉम्ब इन्वेंट नहीं हुआ था, तो बॉम्ब्स क्या है वो पता ही नहीं था। लेकिन साक्षात्कार में ये देखा आग का गोला धरती को स्पर्श कर रहा है और ब्लास्ट हो रहा है और बहुत हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। और दूसरे प्रकार का विनाश ये देखा, धर्मों के बीच लड़ाई, भाई भाई के बीच लड़ाई, परिवारों में लड़ाई, ये जो यहाँ धर्मों के बीच लड़ाई, वो हजारों लोग उसमें मर रहे हैं। और तीसरे प्रकार का विनाश उन्होंने देखा कि प्राकृतिक आपदाएं, कहाँ बाढ़ आ रहा है, कहाँ फैमिन हो रहा है, कहाँ बहुत ये प्राकृतिक आपदाएं देखी। तो तीन प्रकार के विनाश के दृश्य देखा उन्होंने। करीब आधा पौना घंटे तक उन्होंने ये दृश्य देखा। दृश्य देखने के बाद उनको बहुत रोना आया, ये ऐसा महाविनाश होने वाला है इस कलयुगी दुनिया का। तो फिर उनके मन में ये प्रश्न हुआ, अगर ये विनाश होने वाला है तो भविष्य में क्या होगा, भविष्य क्या है विनाश के बाद। बहुत मनन चिंतन चल रहा था, बहुत विचार चल रहा था। तो कुछ दिनों के बाद उनको और एक प्रकार का साक्षात्कार हुआ, आने वाले सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार, जो हर धर्म में इसका जिक्र है। हिंदू धर्म में कृति युग, स्वर्ग या सतयुग कहा जाता है। मुसलमान लोग अल्लाह का बगीचा कहते हैं, क्रिश्चियन लोग गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं। तो अलग अलग धर्म के लोग ये मानते हैं ये परफेक्ट दुनिया थी, ऐसा समय था जो हर इंसान सुखी था और बहुत, मतलब स्थूल जो धन का भी अपरम अपार सुख था, स्थूल सुख भी था और आत्माएं सर्वगुण संपन्न, सोलाकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। चारों ही प्रकार का सुख था, तन मन धन और जन का सुख वहां का परफेक्ट समय था, जहां दुख और अशांति के नाम निशान नहीं थे, ऐसा परफेक्ट समय था। तो इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश के बाद ऐसा परफेक्ट समय जहां श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ सागर के ऊपर, पीपल के पत्ते के ऊपर अंगूठा चूसता हुआ नजर आया, वहां हर नारी देवी थी, हर नर देव था। ऐसा समय, परफेक्ट समय आने वाला है। तो ऐसे कलयुगी दुनिया सतयुगी दुनिया में परिवर्तन होने वाला है। तो ये सेकंड जब ये साक्षात्कार हुआ, दादा को थोड़ा तसल्ली हुआ कि हाँ ऐसा समय आने वाला है। और कुछ दिनों के बाद जब वो सिंध हैदराबाद में थे, एक बहुत बड़ा धार्मिक प्रवचन चल रहा था, गुरुजी आए हुए थे उनके घर में, धार्मिक प्रवचन चल रहा था। अचानक बीच में उनको कुछ खींच हुई और वो जाकर के अपने कमरे में बैठ गए। कमरे में बैठते ही वो शांति में बैठे और फिर एक दिव्य अनुभूति हुई दादा लेखराज को, परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण दादा लेखराज में हुआ। जब दादा उठ करके गए थे, ये चल रहा था, तो पीछे पीछे अपने बहू ब्रिजेंद्र दादी उनके पीछे पीछे गए कि क्यों दादा उठ करके चले गए, ऐसा कभी भी नहीं उठ के जाते, बीच सत्संग से उठ के नहीं जाते हैं। तो उठ करके जब चले गए और देखा अपने कक्ष में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं और चारों तरफ एकदम दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और अंदर से ये आवाज आ रहा है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, सच्चित आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये आवाज आ रहा था, देख करके बहुत चकित हो गए दादा, ये दादा के बहू ब्रिजेंद्र दादी, और दरवाजे पर ही खड़े होकर के उसका आनंद लुटा रहे थे। ऐसा लग रहा था पूरा कक्ष प्रकाश से भरा हुआ है और कोई दिव्य संदेश मिल रहा है। और धीरे धीरे ये समझ में आया, ये स्टार्टिंग में पता नहीं चला कि ये हो क्या रहा है, ये दादा नहीं बोल रहे हैं, कोई और शक्ति बोल रही है। धीरे धीरे जब ये प्रवचन करना शुरू हुआ, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू किया, धीरे धीरे लोग आना शुरू किया उनके घर में और उनका प्रवचन सुनना शुरू किया। सबसे पहले तो वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते थे और उसका अर्थ सुनाते थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये श्रीमद् भगवद गीता भी किसी का लिखा हुआ है, डायरेक्ट जब परमात्मा बोल रहे हैं इसकी भी आवश्यकता नहीं है। जब उस समय जो भाई बहने वहां आते थे, उस क्योंकि सभी ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे, इसीलिए स्टार्टिंग में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ओम मंडली के रूप से लोग बोलना शुरू किया। और जैसे जैसे लोग आते थे उनको दिव्य साक्षात्कार होता था ब्रह्म बाबा से, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को विष्णु का साक्षात्कार होता था, तो लोगों का लगता था कि ये भगवान है, ब्रह्म बाबा दादा लेखराज भगवान है, तो उस लक्ष्य से आते थे हमें भी साक्षात्कार हो जाए, भगवान का ये दर्शन हमें प्राप्त हो जाए, तो इस लक्ष्य से लोग आते थे, साक्षात्कार होता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला श्री कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन शिव का अवतरण हो चुका है, शिव ये ज्ञान दे रहे हैं, और जैसे जैसे लोग आते रहे फिर उन वो ज्ञान अर्जन करना शुरू किया और सब कुछ अपना जीवन इसके लिए समर्पण करना शुरू किया। तो धीरे धीरे फिर दादा लेखराज का नाम प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में फिर वो जानने लगे, मानने लगे लोग। और दादा की जो वाइफ थे, धर्म पत्नी थे जसोदा जी, बहुत धार्मिक विचार वाले। जैसे जैसे दादा इस संस्था में या फिर ये ज्ञान में चलने लगे, माता जी भी दादा के साथ ही अपना जीवन समर्पित रूप से इस कार्य के लिए अपना जीवन दिया। ब्रिजेंद्र दादी, जिनका नाम राधिका थी, बाबा के लौकिक बहू, उनको उन्होंने देखा था कि शिव बाबा कैसे ब्रह्मा के तन में आकर के ये अवतरित होकर के ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले तो ब्रिजेंद्र दादी ने देखा था और ब्रिजेंद्र दादी बहुत अमीर घर के थे। जब वो बहुत छोटे थे, सिंध हैदराबाद की बात है ये, अपने भाई के साथ एक दुकान में खड़े थे और कुछ खरीदारी कर रहे थे। ये शादी होने से पहले की बात है। और दादा लेखराज ऐसे गुजर रहे थे और इस बच्ची को देखा। इस बच्ची ने बहुत सुंदर हैट पहना हुआ था, बहुत सुंदर दिख रही थी। और दादा लेखराज ने सोचा कि ये बच्ची है ना, मेरे बड़े बच्चे की बहू बनेगी। उसी समय सोच लिया था, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस, उनके हाव भाव देख करके आकर्षित हुए थे। और कुछ दिनों के बाद ब्रिजेंद्र दादी के जो लौकिक भाई है, उनको निमंत्रण देते हुए उनको अपने घर में निमंत्रण दिया। और ये जब घर में आए और दादा ने कहा कि आपकी जो बहन है हमारे घर की बहू के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। और भाई को पता नहीं था कि दादा लेखराज कितने धनवान है। तो उनके भाई ने कहा कि देखिए कि हम उस घर में अपने बहन को देना चाहते हैं जिस घर तीन कंडीशंस डालना चाहते हैं। अगर ये तीन कंडीशंस पूरा होगा तो हम अपने बहन को अपने आपके घर में शादी करा करके देते हैं। एक था कि हमारे जो बहन है केवल गलीचों पर चलेगी, मना कारपेट्स पे चलेगी, मना आपका घर पूरा कारपेटेड होना चाहिए, इतने धन होना चाहिए आपके घर में, तब जाकर के कारपेटेड होगा। उस जमाने की बात है, 1930s की बात है। और दूसरा कंडीशन ये था, जब भी बाहर घर से बाहर निकलेगी आपका उसका पर्सनल एक कार होगा, ऐसे शेयर नहीं करेगी, उसका पर्सनल कार होगा। और तीसरा कंडीशन, मेरी बहन किचन में काम नहीं करेगी। तो ये तीन कंडीशंस अगर फुलफिल होगा तो हम आपके हमारी बहन को आपके घर में शादी करके देंगे। दादा बहुत मुस्कराए, उनको पता नहीं था ना कि दादा कितने धनवान घर के हैं। फिर बाद में जब घर का पूरा अवलोकन कराया और आपके उनके दुकान के सारे जो कबर्ड्स है खोल खोल करके दिखाया, कितना उनके कबर्ड्स में सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात है, तो सारे सब कुछ देखने के बाद ब्रिजेंद्र दादी के भाई ने माना कि ठीक है, हम अपने बहन को शादी करके देंगे। तो इतने धनवान घर को बिलोंग करते थे दादी ब्रिजेंद्र। जैसे ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ, धीरे धीरे सब कुछ उन्होंने त्याग किया, क्योंकि उस जमाने की महिलाएं आप सोच सकते थे कि ऊपर से नीचे तक पूरा सोने के ऑर्नामेंट्स वो पहनते थे, है ना, बहुत ऑर्नामेंट्स था ब्रिजेंद्र दादी के पास। लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा इसको त्यागो। एक साल जब ये संस्था शुरू होने के बाद एक साल जैसे ऐसे ही चलता रहा। एक दिन ऐसे बगीचे में वो घूम रहे थे ब्रिजेंद्र दादी, अचानक शाम को बाबा के पास आकर के दादी कहते हैं कि सारा कुछ गहना और सो जो कुछ भी था एक ये एक कपड़े में डाल करके, ये गठरी बांधते हैं ना, गठरी बांधकर, इतना बड़ा गठरी था जिसमें पूरा अपना पूरा ऑर्नामेंट्स उसमें डाल करके गठरी बांध करके बाबा के पास लेके आए और बाबा को कहा कि बाबा आज से ये सब कुछ आपको समर्पण, तो मैं आज से साधारण कपड़ा पहन करके मैं अपना जीवन व्यतीत करना चाहूंगी। तब से सफेद कपड़ा पहनना शुरू किया, सब कुछ उन्होंने त्याग किया। तो ये अभी अगर देखते हैं कि उस जमाने में जो उन्होंने जो त्याग किया, केवल एक आत्मा की बात नहीं, हर व्यक्ति ने बहुत कुछ त्याग किया। निर्मल शांता दादी ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी, जब ये ओम मंडली शुरू हुआ वो उनकी शादी हो चुकी थी, बहुत धनाढ्य घर के घर में उनका शादी हुआ था और रोज बाबा के घर में आते थे कुछ ना कुछ काम से, बहुत नजदीक था तो रोज आते आना जाना हुआ करता था। लेकिन उनको समझ में नहीं आता था ज्ञान क्या है, तो क्योंकि बचपन से बहुत प्यार मिला था निर्मल शांता दादी को, और जब ये ज्ञान शुरू हुआ तो जब भी दादी आते थे घर तो ज्ञान देते थे, ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान देते थे, जसोदा माता भी ज्ञान देते थे, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। तो निर्मल शांता दादी को गुस्सा आता था कि क्यों मुझे अभी प्यार नहीं करते कोई, जब चाहे तब वो ज्ञान ही सुनाते थे, सुनाते रहे हैं। पहले तो बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह दिखाते थे, लेकिन अभी कोई नहीं प्यार करता, तो ऐसा लगने लगा था। तो एक शाम को जब निर्मल शांता दादी आए ब्रह्मा बाबा के घर में, ऐसे कुछ बहनें कुछ पढ़ाई करते कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, और पढ़ने के बाद एक बहन ट्रांस में गई। ट्रांस में ना फिर वतन में जाते हैं, एकदम ट्रांस में जाकर के, और धीरे धीरे सभी बहनें ट्रांस में गए और बहुत सुंदर रीति से डांस कर रहे थे सभी ट्रांस में। ट्रांस में वो सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार कर रहे थे, कैसे कृष्ण श्री कृष्ण के साथ डांस करते हैं वहां। तो वो जो डांस हो रहा था बहुत अलौकिक डांस था, ऐसे स्टेप्स ऐसे हाव भाव कोई लौकिक जैसे देह भान वाला नहीं था, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही जैसे परमात्मा की याद में जैसे डांस कर रहे थे, अलौकिक था। तो दादी को आकर्षण हुआ, निर्मल शांता दादी को आकर्षण हुआ, ऐसे डांस कभी नहीं देखा है, और ये जो भी डांस कर रही है बहनें इन सभी को मैं जानती हूँ, ये फलानी है, क्योंकि एक परिवार हो मतलब वहां एक कम्युनिटी था, सिंध कम्युनिटी, हर एक को जानते थे, तो इसको भी जानते। लेकिन पहले तो ऐसे कभी नहीं डांस करते हुए देखा इस बहन को, अभी ऐसे कैसे डांस कर रही है, तो बहुत ही जैसे अलौकिक था। फिर जब सब कुछ हो गया, आधा घंटा चला, फिर उसके बाद जब बैठे, फिर दादी एक बहन के पास जाकर के कहा कि बहन आपने क्या अनुभव किया, ट्रांस में क्या देखा, आप बता सकते हो, मैं सुनना चाहती हूँ। तो उस बहन ने कहा कि वो बोलने के मूड में नहीं थी, क्योंकि एकदम अलौकिक अनुभव से जब नीचे उतरते हैं बोलने को मन नहीं करता है। तो उस बहन ने कहा कि अभी ना मैं बोलने के मूड में नहीं हूँ, कल आना मैं सुनाऊंगी। तो दादी ने सोचा कि चलो मैं कल आती हूँ। फिर गए और जाते समय ब्रह्मा बाबा लेके गए उनको ड्रॉप करने के लिए गाड़ी में। रास्ते में ब्रह्मा बाबा को निर्मल शांता दादी कहते हैं कि बाबा मैं कल आना चाहती हूँ वापस, उस बहन के अनुभव सुनना है कल शाम को, क्या आप गाड़ी भेजेंगे? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा देखेंगे कल क्या होगा। दादी को बहुत गुस्सा आया, कभी बाबा ऐसे कभी नहीं कहते हैं, पहले कहते थे अभी क्यों ऐसे कह रहे हैं, बहुत गुस्सा आया, बाबा ऐसे क्यों कह रहे हो, आप कभी नहीं कहते थे पहले अगर आपको गाड़ी नहीं भेजना है तो नहीं भेजे, मैं नहीं आती हूँ, गुस्सा आया दादी को। तो बाबा फिर भी कहते कल देखा जाएगा जो होगा। तो गुस्से में जाकर के रात को भोजन किया और सो गए। जब सोए आधी रात को उनको कृष्ण का साक्षात स्वप्न हुआ, साक्षात्कार हुआ स्वप्न में, और अचानक उठ करके बैठ गए तो ये क्या हो रहा है, फिर सो गए, फिर थोड़े समय के बाद फिर एक स्वप्न आया, फिर वो देखा ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण, ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण, ऐसा कुछ उनको अनुभव हुआ। फिर उनको समझ में आया यही तो बात है, शायद मेरे पिता पिता नहीं रहे अभी, क्योंकि अभी केवल अपने पिता के रूप में देख रहे थे ना ब्रह्मा बाबा को, तो पिता पिता नहीं रहे, श्री कृष्ण बन रहे हैं, तो इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कल सवेरे जा करके मैं माफी मांग लूं। तो वो सो गए और सुबह जब उठे तो बहुत बुखार था, उठ नहीं सके, और फिर बाद में पता चला। तो इसीलिए तो पिताजी कह रहे थे कि कल देखा जाएगा क्या होगा, ये जानी जाननहार है, उनको पता था कि ऐसा होने वाला है कल। तो फिर सो गए और सुबह गए नहीं गए उन वहां ब्रह्मा बाबा के घर में। फिर वो संदेश भिजवाया कि मैं नहीं आ सकती हूँ, बुखार है। फिर शाम को ब्रह्मा बाबा खुद आए और उनको लेके गए, और दादी ने ब्रह्मा बाबा को माफी मांगी, और तब से लेकर के अपना सब कुछ समर्पित करते हुए इस ज्ञान मार्ग में चले। और वो दादी निर्मल शांता दादी को एक छोटी सी बच्ची थी, और उनके परवरिश पिताजी के उनके पिता के पास छोड़ करके पूरी तरह इस संस्था में आए और समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देने लगे तब से लेकर के। और चौथी बेटी जो है नवनिधि, वो भी थोड़े समय ज्ञान में चली, फिर उसके बाद शादी हुआ उनका। और दादा नारायण छोटा बेटा है ब्रह्मा बाबा का, वो भी ज्ञान में थोड़ा समय चले और फिर उनकी भी शादी हुई। दादी सूर्य का भी ऐसा ही हुआ। दादा लेखराज जो कलकत्ता में अपना दुकान चलाते थे, लकीराज सेवक राम एंड सन्स जो न्यू मार्केट में कलकत्ता में चार्ल्स हॉग मार्केट में उनका दुकान था, और उनके साथ साथ एक और दुकान था राम लक्ष्मण एंड कंपनी जो आनंद किशोर दादा संभालते थे। वो भी आनंद किशोर दादा भी दादा लेखराज के संबंधी थे। जब उनको ज्ञान मिला तो आनंद किशोर दादा भी सब कुछ अपना दुकान समेट करके अपना जीवन इस यज्ञ में समर्पित किया। विश्व किशोर भाऊ जो ब्रह्मा बाबा के बड़े भाई का बेटा था, वो ब्रह्मा बाबा के परिवार में ही रहा करते थे, उनकी लौकिक वाइफ के साथ संतरी दादी के साथ ब्रह्मा बाबा के साथ ही रहा करते थे। जब ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अपना बिजनेस समेट करके सिंध हैदराबाद में गए, कलकत्ता का दुकान, बॉम्बे का दुकान, सब कुछ समेट करके अपने जो पार्टनर है, पार्टनर को जो भी देना था दे करके अपना हिस्सा लेकर के समेट लिया उन्होंने। जब उन्होंने अपना बिजनेस समेटा, विश्व किशोर भाऊ भी बाबा के साथ साथ यज्ञ में आए संतरी दादी के साथ साथ, और उस ओम मंडली में बहुत सारी बहनें आने लगे थे प्रवचन सुनने के लिए। उनमें से एक थी ओम राधे जो निर्मल शांता दादी के क्लासमेट थे, और उस समय बहुत ही सुंदर रीति से गाते थे, बहुत अच्छा वो प्रवचन भी देते थे ओम राधे। उनको मम्मा कहते हैं। बाबा ने एक कमिटी बनाई, 1936 दीपावली का समय था, एक कमेटी बना करके 8 बहनों को उस कमेटी में रखा, 4 कुमारियां और 4 माताएं इनको कमेटी बना करके सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने अपना चल अचल संपत्ति इनको समर्पित किया। इनको समर्पित किया और एक ओम मंडली का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा को बनाया। और मम्मा इस संस्था के सबसे पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही और साथ साथ जो बहुत सारी कुमारियां आ रही थी उनमें से एक थी प्रकाशमणि दादी, जो बाद में इस संस्था के चीफ बनी। आप भी एक बहुत ही जाने माने परिवार को बिलोंग करते थे, आपके पिताजी एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बचपन में ही दादी का भविष्य देख लिया था। उनके पिताजी ने कहा था कि ये आगे जाकर के एक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाली है। तो जब ये ओम मंडली बना, पिताजी ने बहुत सहज रूप से दादी को छुट्टी दी इस संस्था में आने के लिए। और बचपन से ही वो, जब ये आए तो 13-14 साल के थे, तब से लेकर के संस्था में जुड़ करके अपनी सेवाएं देने लगे थे। और मनमोहिनी दीदी एक थे, तो आप भी इस संस्था के संस्थापक रहे दादी प्रकाशमणि के साथ साथ। हृदय पुष्प दादी थे और इनकी कहानी बहुत सुंदर है। हृदय पुष्प दादी एक विधवा थी और बचपन से ही यह सोचते थे कि मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन उस समय के परिवार के नियमों के समाज के नियमों के अनुसार उनकी शादी की गई थी। और 6 महीने में ही दादी के जो पति थे उनका देहांत हो गया था, 6 महीने में वो विधवा बन गई थी और बहुत रोते थे। उस जमाने में विधवा बनना बहुत बुरी बात होता था, क्योंकि एक सोशल लाइफ नहीं होता था, कोई भी सोशल सेलिब्रेशंस में वो नहीं जा सकते थे। एक सफेद कपड़ा पहनना होता था और काले कोठरी में रहना होता था, बिस्तर पे नहीं सो सकते, जमीन पे सोना होता था और साधारण भोजन नहीं कर सकते थे, बिना नमक बिना मसाले के, बिना ऐसे ब्लैंड भोजन करना होता था। बहुत विधवाओं की हालत बहुत बुरा होता था उस जमाने में, बहुत रोते थे। और किसी ने कहा, उनकी कोई सहेली ने कहा कि दादा के ओम मंडली लगी है तो वहां बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोगों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है, शायद आप जाएंगे तो आपके जीवन भी सुधर जाएगा, आप चलो हमारे साथ। तो उस सहेली ने हृदय पुष्प दादी को उस ओम मंडली में लेके गए। जैसे ही बाबा को देखा दादी ने, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया और धीरे और बाबा उनको ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। तो सबसे पहले बाबा ने दादी को पूछा कि आप कौन हो, कि दादी ने कहा मैं बहुत दुखी इंसान हूं, क्योंकि दुखी थे। और बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा के गुण और शक्ति सब पूरा तरह ज्ञान दिया। और जैसे जैसे ज्ञान देते रहे, दादी को बहुत अलौकिक अनुभव होने लगा। आधे पौने घंटे के ज्ञान चर्चा के बाद फिर से बाबा ने पूछा, अभी बताओ आप कौन हो, कि दादी ने कहा कि मैं एक सुखी आत्मा हूं। तो देखो, आधे पौने घंटे में ही इतना डिफरेंस आ गया। पहले बोलते थे दादी कि मैं एक दुखी इंसान हूं, और आधे घंटे के बाद अभी कह रहे हैं मैं एक सुखी आत्मा हूं। और फिर वहां योग में बिठा दिया। 1-2 घंटे तक वो वतन में चले गए, ट्रांस में गए, बहुत सुंदर साक्षात्कार होने लगे। और एक कमरे के कोने में बैठ करके वो बहुत आनंद लुटा रहे थे और उनके परिवार वाले आकर के ढूंढ रहे थे, पता नहीं कहाँ चली गई। उन्होंने कहा था कि यहाँ ओम मंडली में आने वाली थी, फिर ढूंढ ढांड करके फिर पता चला कि ये कोने में वो बहुत सुंदर अनुभूति कर रहे हैं। उनको लेके गए वापस घर, फिर रोज आने लगे और बहुत उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आने लगा। उनके परिवर्तन देख करके उनके परिवार वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि पहले बहुत रोते थे, फिर अभी बहुत खुश रहा करते थे, बहुत अपने जीवन अपना जीवन सुधर गया था। और धीरे धीरे अपने परिवार वाले सब आने लगे, उनकी माँ, उनकी बहनें, सब ओम मंडली में आने लगे। और एक समय ऐसा आया कि ब्रह्मा बाबा ने सब परिवार वालों को कहा कि अगर आपको ओम मंडली में आना है तो लेटर लिख लेकर के आना, अपने पिताजी से या पति से लेटर, परमिशन लेटर लेके आना। तो दादी और दादी के परिवार वाले, माँ और बहनें, सब उनके पिताजी के पास गए लेटर लेने के लिए कि परमिशन लेटर दीजिए ओम मंडली जाने के लिए। तो पिताजी ने मना कर दी, मैं लेटर नहीं दे सकता हूँ आपको, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये वहां जाएं। उन दिनों में बहुत सारे नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो गया था समाज में कि ऐसे दादा है, वो ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, अपने आप को श्री कृष्ण समझते हैं, उनको ये कह रहे हैं कि 16,108 पटराणियां चाहिए उनको। ऐसे तो सच्चाई तो वो तो था ही नहीं, आपको पता है सच्चाई कुछ और होता है और जो फैलता है बहुत कुछ और होता है। बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी था, तो इसीलिए पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी वाइफ और बच्चियों को जाना नहीं देना चाहते हैं, तो मना किया। तो दादी आकर के बाबा को बोला कि बाबा, पिताजी नहीं देना चाहते परमिशन लेटर। तो बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप पिताजी को बोलो कल आकर के मेरे से मिले। जब पिताजी को जाकर के बताया उन्होंने कि पिताजी को कहा कि दादा मुझे बुला रहे, क्योंकि उन दिनों में तो दादा का जो ये प्रतिष्ठा थी समाज में, बहुत एक तरफ प्रतिष्ठा थी लेकिन ओम मंडली के कारण से बहुत सारी बातें भी चल रही थी। तो जब दादा ने बुलाया और मैं नहीं जाऊं, ये हो नहीं सकता। तो फिर वो आए दादा ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए, दो मिनट बाबा से मिले और बाबा ने कहा कि मम्मा से जाकर के मिलो। तो मम्मा के पास भेजा रुद्र पुष्पा दादी के पिताजी को, और मम्मा सहज शब्दों में उनको ज्ञान सुनाया कि देखो ये शरीर मंदिर है, आत्मा मूर्ति है। जब भी मंदिर में आप भोग लगाते हो, आप क्या नॉनवेज भोग लगाते हो क्या, शराब भोग लगाते हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन भोग लगाया जाता है। तो फिर क्या आत्मा को आप ऐसा अशुद्ध भोजन दे सकते हो? तो वो शराब भी पीते थे, नॉनवेज भोजन भी करते थे, सब कुछ हैबिट्स थे उनके पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत गहरा अनुभव उनको हुआ। एक घंटा मम्मा ने समझाया होगा पूरा ज्ञान, बेसिक ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मम्मा ने दिया एक घंटा। फिर जैसे ही घर वापस आए, पूरी तरह परिवर्तित व्यक्ति हो गए। घर वापस आते ही उनका एक घर में एक बार था, छोटा सा घर में बार होता है जहां विदेशी सब प्रकार के अल्कोहल रखा हुआ था। वो सारे विदेशी जो भी बहुत एक्सपेंसिव बॉटल्स थे, सारा निकाल करके फेंकना शुरू किया। उसी समय उनके भाई आए, उनके कहा कि दादा आप क्यों फेंक रहे हो, अगर आपको नहीं पीना है तो हमें दे दो, हम पी लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पाप का कर्म है, अगर मुझे नहीं पीना है तो किसी को भी नहीं पीना है ये। तो फिर सारा उसको डिस्ट्रॉय किया, तब से लेकर के उन पूरा वेजिटेरियन हो गए, पूरी तरह शराब भी छोड़ दिया। और बाद में परिवार सहित वो ओम मंडली में समर्पित हुए। जैसे ब्रह्मा बाबा सब कुछ अपना चल अचल संपत्ति कमिटी को समर्पित किया था, ओम मंडली के कमिटी को समर्पित किया, ऐसे हृदय पुष्प दादी के पिताजी पूरे परिवार उनकी चल अचल संपत्ति पूरी तरह इस संस्था को समर्पित करके पूरा जीवन यहाँ समर्पित किया, जैसे कमिटी बना करके पूरी तरह। और फिर जैसे सिंध हैदराबाद में थोड़ा बहुत ऐसा नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगा कि बाबा को लगा कि नहीं अभी ये स्थान चेंज करना चाहिए, फिर से हैदराबाद से कराची में शिफ्ट किया पूरा ओम मंडली, वहाँ बोर्डिंग स्कूल खोला और वहाँ छोटे बच्चों के लिए जैसे माताएं भी आ गई बहुत सारे, 350 माताएं बहनें और कुछ भाई पूरी तरह इस ओम मंडली में आ गए। और उस समय जब माताएं आई अपनी बच्चों को भी लेके आए थे, कुछ बच्चे 5 साल के 3 साल के 8 साल के ऐसे बच्चे भी थे और उनको स्कूल भी भेजना था तो क्या करें, तो बाबा ने कहा कि चलो बोर्डिंग स्कूल खोल लेते हैं। तो बोर्डिंग स्कूल खोल करके इन बच्चों को वहां पढ़ाया, लौकिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ अलौकिक सब्जेक्ट्स भी उनको सिखाया। और उन बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर्स 13-14 साल की बच्चियां थी, प्रकाशमणि दादी ये जो भी दादियां अभी स्कूल पूरा करके आए हुए थे तो वो पढ़ाते थे इन बच्चों को। लौकिक परवरिश के साथ साथ अलौकिक परवरिश भी बाबा ने सबको दी। और उसी समय थोड़ा बहुत हंगामा ज्यादा हो गया, एंटी ओम मंडली एक संस्था स्थापित हो गया, क्योंकि सिंध हैदराबाद और कराची में ज्यादातर करके सिंधी लोग रहते थे, जहां मेजॉरिटी मेन जो होते थे वो बाहर विदेशों में बिजनेस करते थे शिप के द्वारा, वहाँ कराची में सागर है तो शिप से वहाँ विदेशों में जाते थे बिजनेस करते थे, तो साल भर होते नहीं थे घर में, फिर साल में 2-3 महीने के लिए घर आते थे। तो घर जब आकर के देखा तो ये सारा ओम मंडली का हवा चल रहा है, लोग कह रहे अपनी पत्नियां कह रही है कि पवित्रता धारण करना है, हमें पवित्र रहना है, पवित्र जीवन अपनाना है, तो पवित्रता को लेकर के बहुत हंगामा हुआ कि पवित्र कैसे रह सकते हैं करके। फिर एंटी ओम मंडली का एक वो हुआ, फिर बहुत हंगामा होने के कारण से एक दिन सुबह सुबह ये सारे जो प्रतिष्ठित लोग हैं एंटी ओम मंडली के, वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े ऑफिसर्स कमिश्नर ये सब थे, एक दिन वहां ओम मंडली के भवन के सामने आकर के पूरा नारा लगाना शुरू किया कि अभी छोड़ो आप यहाँ इस जगह खाली करो, आपने माताएं अपनी बच्चियों को हम लेके जाना चाहते, बहुत हंगामा करना शुरू किया। बाबा ने कहा कि ये तो कौरव है, ये तो बहुत हंगामा कर रहे हैं, हम इनके सामना शांति से योग से परमात्मा की याद से उसको सामना करेंगे। तो बाबा ने क्या सोचा कि ये छोटे छोटे बच्चियां जो इस चित्र में देख रहे हैं जो बोर्डिंग में पढ़ते थे उस समय, तो उनको आगे रखा और वह खड़े रहे पूरा दिन, सुबह से जब ये पिकेटिंग शुरू हो गया हंगामा शुरू हो गया, ये बच्चियों के साथ साथ सभी जो ओम मंडली के भाई बहने सब वहां खड़े रहे। और दोपहर का समय था, बहुत ज्यादा धूप था और इन बच्चों को देख करके आंटी ओम मंडली वाले लोगों को बहुत तरस आ रहा था, ये बच्चियां बच्चे छोटे छोटे बच्चे धूप में खड़े हैं तो इनको वापस अंदर ले लीजिए करके, लेकिन फिर ये बहुत दृढ़ संकल्प से बच्चे खड़े थे कि नहीं हम यहाँ रहना है तो यहाँ रहेंगे, पवित्र जीवन अपनाएंगे तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो ये दृढ़ता को देख करके आंटी ओम मंडली के जो भी भाई थे वो अपना घुटना टेक दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना जो भी कार्य चल रहा है चलने दो, फिर वो वापस चले गए। लेकिन वो चुप नहीं रहे, फिर एक उन्होंने कंप्लेन कर दी, लॉस सूट बुक कर दिया फिर वहां कोर्ट में भी बुलाया मम्मा को, फिर वहां बहुत वाद विवाद चला कि क्यों ये ओम मंडली स्थापित हुआ, उसका लक्ष्य क्या है। तो सारा जो वाद विवाद सुना, फिर बाद में यही निष्कर्ष निकला कि ये जो भी ये कार्य चल रहा है कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है समाज को, और ये अच्छा कार्य है, एक मूल्य सिखा रहे हैं समाज को, एक अच्छा जीवन सिखा रहे हैं। इसीलिए जो भी केस था ब्रह्म कुमार ओम मंडली के खिलाफ, सारा कुछ रद्द हो गया और साफ हो गया, और फिर से ये ओम मंडली सुचारू रूप से फिर चलना शुरू हुआ। और इसका नींव जो है ओम मंडली कहे, या फिर बाद में यही ओम मंडली प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में फिर माना गया, इस संस्था का नींव है पवित्रता। पवित्रता के आधार से खुद को बदलना है, खुद को बदल करके विश्व को बदलना है, इसी नारा को लेकर के फिर आगे बढ़े। और मम्मा बाबा इन कुमारियों को लौकिक अलौकिक परवरिश दिए। इस चित्र में देख रहे हैं सभी माताएं कुमारियां एक शॉर्ट्स पहन करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो क्लिफ्टन सिंध कराची का एक दृश्य है, तो वह एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बाबा का ये कहना था कि उस जमाने में माताएं घूंघट में हुआ करती थी, साड़ी पहनती थी, देह भान को निकालने के लिए, आत्मिक भान में लाने के लिए बाबा ने कहा कि साड़ी छोड़ो, अभी पैंट शर्ट पहनो और सब कुछ काम करना शुरू करो। क्योंकि 350 भाई बहने, माताएं और बहनें ज्यादा थी, 10-15 भाई थे, तो इतने सारे जो इतने बड़ा परिवार है, तो सब कुछ काम खुद को करना था। तो बाबा ने सब कुछ इनको सिखाया, कार रिपेयर से लेकर के जूता सिलाने से लेकर के सब कुछ बाबा ने इनको सिखाया। ऐसी माताएं कुमारियां जो घर में नहीं काम करती थी, बहुत ही अमीर घराने के ये माताएं कुमारियां जो घर में काम करके पता ही नहीं कैसे सब्जी काटना होता है, कैसे खाना बनाना होता है, किसी को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन बाबा ने एक एक चीज इन सभी को सिखाया। और उस समय का त्याग जो दादियों का है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है करना, लेकिन यहां आकर के यज्ञ में आकर के सब कुछ त्याग करके उनको करना शुरू किया, उनका त्याग बहुत बड़ा त्याग है। और ब्रिजेंद्र दादी गाड़ी भी चलाते थे और गाड़ी रिपेयर भी करते थे, बस भी चलाते थे, सब कुछ वो खुद ही करते थे। और उसी समय फिर भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, फिर पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पार्टीशन हो गया, और ये रह गए पाकिस्तान में, कराची में रह गए। और फिर उस समय फिर सोचा कि आए ना आए क्या करे, वो वहां पूरे मुसलमान लोग थे वहां कराची में, और उनका कहना था कि आपको खुद कुछ नहीं होगा, आप खुदा के बंदे हो, आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपका आपके सिक्योरिटी करेंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। तो बहुत ही सुरक्षित रहे वहां ही भवनों के अंदर, 3-4 भवन था कराची में जो बाबा ने खरीदी थी, और उस उन भवनों में सभी 350 भाई बहने रहा करते थे। और उस समय पूरी तरह उन्होंने तपस्या की, कोई और प्रोग्राम्स तो होते नहीं थे, बाहर नहीं जा सकते थे, सेवा शुरू नहीं हुई थी, तो केवल सुबह से शाम तक अपने अंदर के सेवाएं, जो सब्जी काटना, खाना बनाना, साफ सफाई, वो बेसिक सेवाएं होती थी, कर्मणा सेवा, और फिर ज्ञान योग, तपस्या, खूब तपस्या की सभी दादियों ने। और गुलजार दादी कहते हैं बहुत छोटे थे जो यज्ञ में आए, तो 5 साल के थे जब यज्ञ में आए, जैसे जैसे बड़े हुए तो सेवाएं भी कर रहे थे। तो दादी को एक दिन उनको सेवा दी थी, तो बड़ा पतीला, तो बड़े पतीले होते हैं जो खाना बनाते हैं, उनको उसके सफाई करना था, धुलाई करना था। दादी के हाथ तो छोटे छोटे हैं, कितने 15-16 साल के हैं, छोटे छोटे हाथ है तो इतने बड़े बर्तन है तो कैसे धोएंगे उसको। तो दादी फिर अंदर खुद करके अंदर पूरा जैसे नहीं साफ करते हैं, तो साफ कर रहे थे तो बाबा आए वहां। तो बच्चे क्या कर रहे हो? बाबा मैं तो सफाई कर रही हूं। तो माना जो भी सेवाएं थी वो बहुत ही मौज से खुशी खुशी से कर रहे थे, ऐसा नहीं कि अरे बाप रे इतना बड़ा बर्तन है मैं कैसे धोऊंगी ये करूंगी, कोई भी मतलब भारीपन नहीं, खुशी खुशी से सेवा समझ करके लोग सेवाएं करते थे। और 1950 तक वहां रहे कराची में, 50 में मई 5th को बाबा ने, वो उसके पहले मार्च में बाबा ने बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी को यहाँ इंडिया में भेजा और दादी को कहा, दीदी को कहा कि भारत जाकर के अलग अलग जगह देखो किस स्थान पर हम पूरे संस्था को हम शिफ्ट कर सकते हैं। दादी और तो दो तीन बहनें यहाँ आए। दीदी जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे के, आपने सुना होगा, उस घराने को बिलोंग करते हैं और उनके चाचा मामा सब वो थे। तो वो वहाँ बॉम्बे में आए तो उनके कनेक्शन से अलग अलग जगह पर उन्होंने देखा, अहमदाबाद देखा, पूना देखा और माउंट अबू आकर के भी देखा। तीन चार जगहों में से फिर बाबा को बोला, बाबा ये जगह देखा है लेकिन माउंट अबू बहुत अच्छा लग रहा है अपने संस्था के लिए, वहाँ शांति है एकदम। तो फिर बाबा ने कहा ठीक है। फिर यहाँ 5th of May यहाँ सभी पूरा शिफ्ट हुए। सबसे पहले वहाँ सब कुछ समेट करके सब कुछ बेचा, फिर वहाँ से लेकर के कराची से लेकर के ओखा पोर्ट तक शिप में आए और ओखा पोर्ट से, जो गुजरात में ओखा पोर्ट है, तो वहाँ से फिर ट्रेन से अबू रोड तक आ करके अबू रोड से फिर माउंट आबू बाय रोड बसेस आए और वहाँ माउंट आबू में एक बहुत माउंट आबू में बहुत सारे पैलेसेस है राजा महाराजाओं के, छोटे छोटे समर पैलेसेस है। तो उसमें से एक राजा का कोटी था ब्रिज कोटी, तो उसको हायर किया और वहाँ आकर के सबसे पहले बाबा और पूरे यज्ञ के भाई बहने वहाँ ब्रिज कोटी में रहे। और फिर उसके बाद दो साल के बाद फिर पांडव भवन, जो अभी का पांडव भवन है, वो पोखरण हाउस कहते थे उसको पहले, तो वहाँ शिफ्ट हुए पांडव भवन में। और जैसे ही पांडव भवन में आए और वहाँ बगरी पाठ शुरू हो गया पांडव भवन में आते ही, क्योंकि जिन्होंने इनवाइट किया था पूरे यज्ञ को, आप यहाँ आओ हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे यहाँ, जिन्होंने बोला था उन्होंने फिर दो तीन महीना सपोर्ट किया। सपोर्ट कर लेने के बाद उन्होंने बैक ऑफ किया कि कहा अभी नहीं हम सपोर्ट कर सकते हैं आपके ये आपकी संस्था को। फिर क्योंकि सब कुछ बेच करके यहाँ आए थे और इतना बड़ा संस्था था, इतने सारे लोग थे और बेगरी पार्ट शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे बाबा ने कहा अभी सेवा का समय है, बाहर जाओ आप अभी और भाई बहनों को ज्ञान दो और ज्ञान दे करके अभी ये ज्ञान देना शुरू करो। और धीरे धीरे बहनें जगह जगह पर जाने लगे और सबसे पहले दिल्ली गए, बॉम्बे कुछ बहनें गई, कानपुर, लखनऊ, तीन चार जगह पर जहाँ उनके लौकिक परिवार था उन्होंने निमंत्रण दिया और बहनें वहाँ गई और धीरे धीरे सेवाएं, बाहर की सेवाएं शुरू की। अभी 14 साल 1936 से लेकर के 1950 तक जो बहनें 14 साल सिंध, हैदराबाद और कराची में तपस्या की थी, दुनिया को नहीं देखा था, 14 साल में बहुत कुछ दुनिया बदल गई थी। और कैसे पैसा गिनना होता है, दुनिया के तौर तरीके क्या है, कुछ भी नहीं पता था इन बहनों को। फिर वो बाहर जा करके दुनिया को देखने लगी तो बहुत हैरान हुए। फिर धीरे धीरे सेवाएं उन्होंने शुरू की। उनमें से एक थे मनोरिंद्रा दादी जो दिल्ली गए। बहुत सुंदर कहानी है मनोर दादी के। मनोहर दादी और गंगे दादी वहां दिल्ली गए, और क्योंकि बेगरी पार्ट था तो बाबा केवल 5 रुपया हाथ में दे करके ट्रेन में बिठा दिया और दोनों बहनें दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में एक जगह पर सेवा करते रहे, कुछ राम मंदिर में, और केवल 2-3 महीने का टाइम दिया था उन्होंने। 3 महीने के बाद राम मंदिर वालों ने कहा कि अभी आप धर्मशाला वेकेट करो, आप कहीं और जाओ, हमें ये चाहिए जगह। दोनों दादियां फिर जमुना घाट पे, एक छोटे से जगह था, जमुना घाट पर जाकर के रहने लगे। वहां उस एक मकान जैसा था लेकिन खिड़की दरवाजा कुछ नहीं थे उस मकान को। वहां दोनों दादियां रहने लगी और रोज कुछ वहां जमुना घाट पे जो भी भाई बहने आते थे वहां ज्ञान सुनाते थे, और रात को एक बहन सोती थी एक बहन जागती थी, सिक्योरिटी देना था ना, ऐसे करके सेवाएं करते रहे। और वहां जहां दादियां थी तो उनके नजदीक एक पहलवानों का अड्डा था, जो पहलवानी करते थे, कुश्ती लड़ते थे, वो अभ्यास करते थे। तो उन्होंने सोचा, वो रोज रात को वो चक्कर लगाते थे, सिक्योरिटी देते थे। और फिर एक दिन अचानक वो पहलवान सभी दूध चावल सब लेकर के दादियों के पास आए। दादियां हैरान हुई, आप कौन है, क्यों आए हैं? तो पहलवानों ने कहा कि हे माते, कि हम ये सोचे थे कि आप अगर सचमुच देविया हैं तो हम अपने जो कुश्ती के जो कंपटीशन होता है उसमें हम जीतेंगे, अगर आप देविया नहीं है तो हम नहीं जीतेंगे, क्योंकि रात भर आपका पहरा हम देते थे, आपको नहीं पता लेकिन हम पहरा देते थे आपके, तो अगर आप सचमुच देविया हैं तो हम जीतेंगे। तो अभी कंपटीशन हुआ सुबह तो हम जीते, तो इसीलिए हम सचमुच मानते हैं आप देविया हैं, आप पवित्र देविया हैं, तो इसीलिए आपको भोग स्वीकार करा रहे हैं, दूध चावल ये सब कुछ लेके आए। और फिर दादियां तो कहा कि हम तो ये स्वीकार नहीं करते, तो फिर दादियां लेकर के फिर उसको पकाया, सबको खिलाया, और लोगों को अलग अलग अनुभव, बहुत दिव्य अनुभव सभी जगह पर होने लगा, और धीरे धीरे सेवाएं बढ़ने लगे। मनोहर दादी दिल्ली गए थे, प्रकाशमणि दादी और दीदी बॉम्बे गए थे, हृदय पुष्प दादी साउथ बैंगलोर गए थे, और ये धीरे धीरे सब सेवाएं, सब जगह पर सेवाएं बढ़ने लगी। और भाई बहन यहाँ मधुबन आने लगे थे बाबा से मिलने के लिए, और फिर विस्तार होने लगा। पांडव भवन, पांडव भवन में सबसे पहले हिस्ट्री हॉल का कंस्ट्रक्शन हुआ, और हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा रोज मुरली सुनाते थे, ज्ञान देते थे, और बच्चे वहां आकर के मम्मा बाबा से मिलते थे। और जगदीश भाई जी का भी अपनी कहानी है, लेकिन समय कम होने के कारण से ज्यादा मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। जो भी लिटरेचर देखते हैं, जो भी किताबें हैं इस संस्था के, जगदीश भाई जी ने लिखा, मेजॉरिटी जो किताबें हैं जगदीश भाई जी ने लिखी हुई है। आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में जब सेवाएं हुई जगदीश भाई जी से, वहां से निकले और मेन स्पोक्स पर्सन रहे इस संस्था के, और अलग अलग जगहों से बाबा से मिलने, मामा बाबा से मिलने के लिए लोग आते रहे। छोटे से छोटे बहुत गरीब घर के भी थे और बहुत अमीर घर के भी बच्चे आते थे। एक बार बाबा खुपले बना रहे थे, जो नहीं, जो गोबर के खुपले बनाते हैं, उस जमाने में तो गैस नहीं था, खुपले से ही सारा भोजन बनाते थे। बाबा बनियान और वो लॉन्ग एक होता था ना बरमुडा जैसे, वो पहन करके कुपले बना रहे थे। तो एक दादी आए बाबा के पास, बाबा को कहा, बाबा एक वीआईपी, एक कमिश्नर या कोई मिनिस्टर कोई आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे को लेके आओ। ब्रह्म बाबा हर एक को बच्चा बच्चा कहते थे, तो बच्चे को लेके आओ कोई बात नहीं। दादी ने कहा, बाबा लेकिन आप तो कैसे हो, अब ठीक ठाक थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओ, अपने कमरे में आ जाओ, फिर मिलाएंगे। बाबा ने कहा कि नहीं 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 बच्चे को यहाँ ही लेके आओ। तो बाबा खुपले बना रहे थे, और वहां ही वो भाई आए और एकदम उनको साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का। माना कोई भी दिखावा नहीं, कोई भी जैसे आडंबर नहीं, सचमुच जो त्याग तपस्या की मूर्ति थे बाबा। और इसके कारण से वहां ही साक्षात, जहां जाए वहां लोगों को साक्षात्कार होता था, बहुत गहरा अनुभव लोगों को होता था। और बाबा का कुटिया, जो पांडव भवन अगर जाएंगे तो बाबा का कुटिया आप देखेंगे। अभी जो वर्तमान समय बहुत ही अच्छी तरह उसको बनाया है बैम्बू से, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वो बेसिक जो झोपड़ी बनाते तो ऐसा था झोपड़ी में, तो बाबा हमेशा वो झोपड़ी में रहते थे। दो प्लेसेस थे, बाबा का कमरा भी था, बाबा का कमरा भी आप जाकर के देखेंगे पांडव भवन में। ठंडी के दिनों में ज्यादातर करके बाबा के कमरे में बाबा रहते थे, गर्मी के दिनों में या दिन भर में बाबा अपनी झोपड़ी में बैठते थे और बच्चों को पत्र लिखते थे। जो भी पत्र आते थे तो उसका जवाब बाबा वहां बैठ करके लिखते थे। तो अभी भी जाकर के देखेंगे तो बहुत सुंदर आप सभी को अनुभव होगा इन दो जगहों पर, स्पेशली ये बाबा की झोपड़ी में। कोई भी प्रश्न है ना, जो भी बातें हैं, जैसा लगता है कि बाबा हमारे साथ ऐसे बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अभी भी लोगों को बहुत सुंदर अनुभव वहां होता है और बाबा के कमरे में भी बहुत सुंदर अनुभव वहां होता है। और 1955 में सबसे पहले एक डेलीगेशन विदेश सेवाओं में गई, प्रकाशमणि दादी, रतन मोहिनी दादी और आनंद किशोर दादा, तीन लोग विदेश जापान में गए, जापान से लंदन में गए और अलग अलग जगह पर सेवा करते हुए 3 महीने के लिए सेवा कर करके वापस आए। तो ये पहला डेलीगेशन था, भारत से बाहर सेवाएं शुरू हुई। फिर उसके बाद जगदम्बा सरस्वती, जो मम्मा, जिनको मम्मा कहते हैं, उन्होंने अपना देह त्याग किया 24 जून 1965, ब्रह्म बाबा से भी पहले। मम्मा को एक छोटी सी बीमारी हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग किया। उसके बाद बाबा 1965 से लेकर के फिर बाबा को लगा अभी, क्योंकि तब तक तो मम्मा जाने से पहले लगता था कि सभी यहाँ विनाश तक रहेंगे, कलयुग विनाश तक सभी साथ में ऐसे पुरुषार्थ करते रहेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। जैसे मम्मा गए फिर लोगों को लगने लगा कि नहीं, अभी जाने का समय है। तो जो यज्ञ का कार्य है, शिवाबा तो है ही है, शिवाबा का कार्य है, शिवाबा का यज्ञ है, ये तो चलना ही है। तो बाबा भी धीरे धीरे समेटने लगे, पुरुषार्थ करने लगे। 1968 की बात है, गुलजार दादी वतन में जाते थे, ट्रांस में जाते थे। तो ट्रांस में जब एक दिन गए संदेश में, फिर आकर के संदेश सुनाया गुलजार दादी, जो हृदय मोहिनी दादी जिनको कहते हैं, आकर के ये संदेश सुनाया कि बाबा को, बाबा वहां वतन में है ना, दो बाबा को देखा। एक बाबा जो संपूर्ण थे, वो वहां एक बाबा को देखा, और ये जो आप बाबा है तो ऐसे ही एक बाबा वहां देखा, लेकिन इस बाबा और उस बाबा में अंतर है। वो लाइट 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 बाबा है, बहुत ही मतलब बहुत ही प्रकाशमय है वो बाबा, तो लेकिन आपके जैसे ही है वो। तो उनको वहां देखा तो ब्रह्मा बाबा को लगा कि ये वैसे बाबा वतन में कैसे है, मेरे जैसा ही एक शरीर वहां वतन में कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जाकर के फिर से पूछो वो बाबा कौन है, वो कौन है। तो फिर से गुलजार दादी वहां गए, फिर से बात किया और फिर मैंने कहा कि मैं ब्रह्मा के संपूर्ण रूप हूं। तो फिर ब्रह्मा बाबा को लगा कि नहीं, मुझे अभी ऐसा बनना है, मैं अभी वर्तमान समय ऐसा हूं, मेरा परफेक्ट फॉर्म वो है, मुझे ऐसा बनना है। तो फिर पूरी तरह पुरुषार्थ करने लगे, बहुत तपस्या करने लगे, पूरी सब तरफ से अपने आप को किनारा करना शुरू किया। जब भी बच्चे आते थे बाबा से मिलने के लिए, उस समय ब्रह्म बाबा सार में समाचार सुनते थे और तपस्या में बैठते थे। और 17th या फिर मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले की बात है, प्रकाशमणि दादी को बुलाया महामधुबन में, और प्रकाशमणि दादी को पूरी तरह पांडव भवन में सब कारोबार दिखाया, कहाँ गदेले रखते हैं, कहाँ बेड्स होते हैं, वो किचन कैसा चलता है, पूरा पांडव भवन का कारोबार कैसा चलता है। दादी को अंगुली पकड़ करके एक एक चीज दादी को दिखाया, समझाया, और दादी अपना अनुभव सुनाती है तो ब्रह्मा बाबा के अंगुली पकड़ते थे, ऐसे पकड़ते थे जब भी जाते थे, तो अंगुली जब पहले पकड़ते थे वो अलग था, लेकिन जनवरी में जब बाबा दिखा रहे थे उस समय जो बाबा के अंगुली जो पकड़ा था बहुत ही डिफरेंट था, वो जैसे रुई लगता था, जैसे लाइट, पूरा शरीर लाइट है, जैसे हाथ को पकड़े ऐसा नहीं लगता था, रुई को पकड़ा है ऐसा लगता था कि बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया था। फिर पूरी तरह दादी को समझा करके 18 जनवरी सुबह थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं था बाबा का, इसलिए मुरली सुनाने के लिए हिस्ट्री हॉल नहीं आए थे। पूरा कर देंगे, 1 मिनट, 5 मिनट में पूरा कर देंगे। फिर मुरली सुनाने नहीं आए थे तो शाम को बाबा ने कहा रात के भोजन के बाद चलो मुरली सुनाता हूं। 9 बजे बाबा ने सबको इकट्ठा किया हिस्ट्री हॉल में और वहां मुरली सुनाया। मुरली सुनाने के बाद बाबा बाहर निकले और 3 शब्द बाबा ने उच्चारा, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी भव। ऐसे कहते हुए अलविदा बच्चे, ऐसे छुट्टी लेते हुए फिर बाबा अपने कमरे में गए। जैसे ही लेटे फिर छाती में थोड़ा बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर को बुलाने जमुना प्रसाद भाई गए थे, फिर डॉक्टर आने से पहले ही आत्मा उड़ गई थी। और जाने से पहले प्रकाशमणि दादी वहां बाबा के सामने थे, जैसे बाबा बैठे हैं अपने बेड पर और बाबा दादी के हाथ में हाथ दे करके दृष्टि देते हुए बाबा की आत्मा उड़ गई। जैसे बाबा ने पूरा विल, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जवाबदारी जैसे प्रकाशमणि दादी को ट्रांसफर करके बाबा संपूर्णता को पहुंच गए। और अभी जो शांति स्तंभ है पांडव भवन में, वहां बाबा का अंतिम संस्कार किया गया, वो अभी शांति स्तंभ के रूप में वहां है और वहां आकर के लोग मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं। और उसके बाद दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी को इस संस्था के चीफ के रूप में निमित्त बनाया गया। इस संस्था के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, इस संस्था की चीफ बहन हो सकते हैं, भाई नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा का हमेशा ये था माताएं बहनों को आगे रखने से बहुत सारी सेवाएं होगी। और नींव, इस संस्था का नींव है बहनें, क्योंकि उस जमाने में बहनें और माताओं को 4 दीवारों के बीच में रखा गया था और अभी बाबा ने उन्हीं को आगे रखते हुए इतनी बड़ी सेवा विश्व भर में चला रहे हैं। और कोई ये सेवा कोई भाई बहनों का नहीं है, ब्रह्मा बाबा का नहीं है, दादियों का नहीं है, खुद शिव बाबा का यज्ञ या शिव बाबा की ये संस्था है वो खुद चला रहे हैं। आप देखते हैं कोई भी एक संस्था का हेड चला जाता है वो संस्था ज्यादा दिन तक नहीं चलता, लेकिन यहाँ देखा जाता है ब्रह्मा बाबा जाने के बाद बहुत सारी सेवाएं और वृद्धि को पाई। प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी के नेतृत्व में विश्व भर में सेवाएं, अलग अलग देशों में सेवाएं बहुत वृद्धि को पाई। और अभी भी दादियां तो नहीं रहे, बहुत फॉरेनर्स भी आने लगे, फिर ओम शांति भवन का निर्माण हुआ, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स करने लगे, फिर ये सारे बहुत सेवाओं का विस्तार ये विंग्स जो सैट विंग के दौरान आप आए हैं, राज्य का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत हमारे 20 विंग्स हैं जो अलग अलग सेवाओं के लिए निमित्त बनाया गया, तो उसके दौरान यहाँ ज्ञान सरोवर में बहुत सारी सेवाएं होती हैं, बहुत सारे लीडर्स और इंटरफेथ प्रोग्राम्स, कम्युनिटी सर्विसेज, ग्लोबल हॉस्पिटल का निर्माण हुआ 1991 में कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, वहाँ गरीबों के लिए फ्री इलाज वहाँ होता है और उनके कनेक्शन में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स देश भर में हैं। और ज्ञान सरोवर 1995 में निर्माण हुआ और फिर शांतिवन उसके बाद, क्योंकि जैसे जैसे संस्था बढ़ती गई लोग आना बहुत ज्यादा होने लगे, फिर अभी शांतिवन में 20,000 भाई बहने बैठने जैसे डायमंड हॉल बहुत बृहद रूप से वहाँ है और 18,000 भाई बहने वहाँ रुक सकते हैं, और सोलार, एशिया बिगेस्ट सोलार सिस्टम वहाँ शांतिवन में वहाँ लगा हुआ है, जहाँ किचन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी देखें वो सब वहाँ सोलार सिस्टम से चलता है। और ना केवल भारत में लेकिन विदेशों में भी हमारी एक यूनाइटेड नेशंस के साथ भी हमारा अफिलिएशन है। 1986 में यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस में जो हमारे प्रोजेक्ट थी मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, तो 88 कंट्रीज में हमने मैसेज दिया था और एक मिनट अगर विश्व के प्रति हम मेडिटेशन करेंगे तो जरूर इस विश्व में हम शांति स्थापित कर सकते हैं। तो इस मैसेज के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को ये मैसेज गया था, जिस कारण से उस समय के हमारे संस्था के चीफ दादी प्रकाश मणि जी को इंटरनेशनल पीस मैसेंजर अवार्ड मिला था यूएन सेक्रेटरी के द्वारा 1987 में। फिर भारत के बाहर लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में और अफ्रीका में हमारे रीजनल हेडक्वार्टर्स है वहाँ हम, और गयाना में पार्लियामेंट में राज्यों का मेडिटेशन के साथ ये पार्लियामेंट शुरू होता है। गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशियस रिकग्नाइज्ड इट एज अ यूनिवर्सिटी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और यूनाइटेड नेशंस में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस कोस्टारिका में जो है, तो हम पीस एजुकेशन ब्रह्म कुमारीज के कोऑपरेशन से होता है। और जो दादी जानकी जी जो एक्स फॉर्मर चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज रहे, वो मोस्ट स्टेबल माइंड ऑन इन द वर्ल्ड घोषित किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, उनको एग्जामिन किया और ईईजी बहुत स्टेबल उनका आया, तो दो वो डिक्लेयर किया गया था शी इज द मोस्ट स्टेबल माइंड ऑन अर्थ। फिर जो चिकागो में 31 अगस्त 1993 में जो वहाँ विवेकानंद जी जाकर के जो वर्ल्ड पार्लियामेंट उन्होंने संबोधित किया, तो 100 इयर्स हुआ था, तो दादी जी को निमंत्रण दिया था प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए, दादी जी वहाँ प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिए थे। और यूनाइटेड नेशंस के साथ ब्रह्म कुमारीज एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप से अफिलिएटेड है और यूकोसॉक ऑफ यूनिसेफ के साथ भी कंसल्टेटिव स्टेटस होल्ड करते हैं। हमारे ऑफिस यूनाइटेड नेशंस में भी है, तो वहाँ जो भी डिस्कशंस होते हैं, पार्लियामेंट्स होते हैं, वहाँ सक्रिय रूप से ब्रह्म कुमारीज का के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ योगदान देते हैं। और हमारी दादियाँ एक एक करके, प्रकाशमणि दादी अगस्त 25 को हमसे बिछड़ गए और फिर दादी जानकी 2020 में 27 मार्च गए, और हृदय मोहिनी दादी 11 मार्च 2021 को हमसे गए। और फिर अभी भी ये संस्था तो चल रही है क्योंकि ये परमात्मा का कार्य चल रहा है, और वर्तमान जो संस्था की चीफ है रतन मोहिनी दादी जी है और दूसरे भाई बहने भी हैं। तो ऐसे आप सबको स्वागत है ऐसे संस्था में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, आपके घर में स्वागत है। ओम शांति।